الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين يا رب العالمين. آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرا پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142 سے 152 تک آج ہم 10 آیات دیکھیں گے انشاءاللہ. پہلے پارے میں ہم دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ، ہم نے پڑھی اور اس میں ہم نے دیکھا 1 سے 20 آیت تک لوگوں کی اقسام دیکھیں کہ متقین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافق بھی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے آدم علیہ السلام کا قصہ دیکھا جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت دی اس زمین کی، اور ان کے بعد بنی آدم کو، تو وہ ایک یعنی نمائندے اللہ تعالیٰ کے بنا کے دنیا میں بھیجے گئے. اور خلیفہ وہی ہوتا ہے نا جو اس کے بعد کوئی کام کرے، اس کا نائب. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں ایک مقصد کے ساتھ بھیجا، بغیر مقصد کے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرما دیا تھا کہ مجھے پتہ ہے جو تمہیں نہیں پتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بنی اسرائیل کی جو بات شروع کی، تو آیت آپ دیکھ لیں 40 سے 123 تک اب پورا بنی اسرائیل کا قصہ ہے، پورے ان کی چارج شیٹ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے منصب دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی. لیکن کہانی شروع ہوئی تھی آدم علیہ السلام سے، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کی کہانی بتا کے پہلے فیلئرز کو بتایا گیا کہ یہ دیکھو فیل ہوئے، اور اس کے بعد سکسیس کو بتایا گیا جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی ہیں، ان کو بتایا گیا. اور اب امت مسلمہ کی طرف ساری بات یہاں سے ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. سمجھ لیں کریکلم دے دیا گیا، ایک سلیبس دے دیا گیا ہے امت مسلمہ کو، کیونکہ اب یہ خلافت کا جو یعنی جو اب آگے اللہ تعالیٰ کے دین کی نمائندگی ہے، ریپریزنٹیشن ہے دنیا میں، اس کو کرنے کی ذمہ داری، اس کا تاج امت مسلمہ کے سر کے پر رکھا جا رہا ہے. اور اس کا سٹارٹ قبلہ کی تبدیلی سے ہے، قبلہ چینج ہونے سے ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک کے بعد ایک احکامات، نماز کے، روزے کے، حج کے، طلاق کے، رضاعت کے، ربا کے، اور بہت سارے شریعت کے احکامات آپ آگے دیکھیں گے. تو یہ سارے امت مسلمہ کے لیے ہیں. آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جب کسی کی اوتھ سیرمنی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ کسی کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ بنایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ایک سیرمنی ہوتی ہے نا شروع میں. تو جب وہ سیرمنی ہوتی ہے تو اس کے اندر ان کو گائیڈ لائنز بھی دی جاتی ہیں، ان کو ذمہ داری جہاں دی جاتی ہے وہاں پہ ان کا منصب بھی ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا عہدہ ہے، تو اس کے اندر کیا کیا آپ کو کرنا ہے. और उसमें अगर मसलन ये भी बताया जाए कि आपसे पहले जो थे वो किस वजह से वो हटाए गए और आपको लाया गया, मसलन है कोई करप्शन करता था या कोई कुछ भी उसके ऊपर अगेंस्ट चार्जेस थे, तो वो बताए जाते हैं। और तारीख में जो पीछे आपसे पहले फलां गुजरे और उन्होंने कितना ज़बरदस्त ये काम किया और कितने ज़बरदस्त तरीके से वो इस कुर्सी के ऊपर जो बैठे इस मनसब को उन्होंने संभाला, तो बहुत ही आसान तरीके से, तो एक तरह से वो रोल मॉडल हैं। और साथ ही एक मिसाल भी दे दी गई कि भाई ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल फेलियर्स थे, वो आपसे पहले वो ही थे, तो अब उनको हटा दिया गया, अब आपको ये कुर्सी दी जा रही है, ये ओहदा दिया जा रहा है, ये मनसब दिया जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर फिर आपको ये करना है, इस तरह से आपको चलना है। तो ये समझ लें कि अब ये जो ताज उनके सर से हटा के, वो पहले आपने सारा पढ़ लिया हुआ, फेलियर्स का भी पढ़ लिया हुआ, आपने सक्सेस की भी स्टोरी पढ़ ली है, आपने जो स्टार्ट हुआ था इस दुनिया में जिस काम के लिए आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा गया वो भी पढ़ लिया है, उससे पहले आपने तीन तरह के लोगों को भी देख लिया, तो अब रोल मॉडल भी जब सामने रख दिया गया और फेलियर्स का भी बता दिया गया, तो अब आप तैयार हैं बिल्कुल इस मनसब को लेने के लिए, आपको समझ आ गई है, तो अब आपने क्या क्या करना है, आपका किस तरह से कौन सी चीजों के ऊपर आपकी फाउंडेशन होगी, आपने किस पे खड़े होना है, ठीक है, वो सारा बताया जा रहा है आयत 142 से लेकर 283 तक, यही सारी बात है। तो ये हम आज जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से देखिएगा कि जैसे मसलन है कि किसी मुल्क में जब मसलन इंडिपेंडेंस लेता है कोई कंट्री, तो उसका एक अलग से एक तशख्स होता है, एक पहचान होती है उसका, एक अलग से झंडा दिया जाता है उसको, एक अलग से उसका तराना होता है, उसकी हदूद और बाउंड्रीज बताई जाती हैं, उसका सारा कुछ होता है, तो वो इंडिपेंडेंस या वो फ्रीडम होना ये कितनी बड़ी चीज होती है एक नेशन के लिए, एक जस्ट मिसाल आपको दे रही। उस तरह से ही उम्मते मुस्लिमा एक बहुत बड़ी पोजीशन उनको मिल रही है, क्या अब उनको जैसे आप कहते हैं ना एक झंडा दे दिया जाता है, एक तराना उनको होता है, तो इसी तरह उम्मते मुस्लिमा के लिए अब एक किबला होगा, जिस किबले की तरफ रुख करके वो नमाज पढ़ेंगे, और वो उनका यानी एक उनका शायर में से भी, उनके लिए शायर अल्लाह में से भी है, और उनको एक डायरेक्शन भी दे दी गई और उनको इनकी एक पहचान बन गई। आप देख रहे हैं एक जगह पे काबा लगाओ तो वो साफ पहचान है आपको कि उसकी तस्वीर भी आप देख लेते तो आपको पता चल जाता है ये मुसलमान है कोई, ठीक है, तो ये उनकी एक पहचान या ये उनकी एक सिमत थी या ये उनको एक डायरेक्शन दे दी गई पिछली उम्मत से हटा के, अब ये चूंकि एक न्यू एक आपका आपको एक मनसब दिया जा रहा है, आप एक चोजन उम्मत है, तो आपके लिए एक ये किबला मुतय्यन किया गया। अब ये भी बात इसके साथ ही समझ लीजिए, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो थोड़ा सा ये सारी समझ लेंगे बातें तो आपको आसान हो जाएंगी आयतें समझनी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत मिली तो आप ने किस तरफ नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नमाज पढ़ते थे मक्का में कि आपके सामने काबा होता था, अब काबा के तो चारों तरफ में किसी तरफ भी खड़े हो जाए ना, तो आपके सामने काबा होता था और उसी डायरेक्शन में आगे बैतुल मकदस था, ठीक है, जो ये कौन सी साइड बनती है, वो जो रुकने यमानी और हिजरे अस्वद के दरम्यान है, जिसके ऊपर हम रब्बाना आतेना की दुआ पढ़ते हैं, जब भी आप तवाफ करते हैं कभी आप गए हो तो आप एक जो साइड होती है काबा की उसमें रुकने यमानी और आगे हिजरे अस्वद है, तो वो वाली जो वॉल है उसकी तरफ मुंह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, तो वो बैतुल मकदस भी इसी डायरेक्शन में था, तो यहां पे तो ये आसान था, लेकिन जब मदीना आए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म मिला कि बैतुल मकदस की तरफ वही किबला था पिछली भी शरीयतों में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी तरफ मुंह करने लगे तो आप समझ लें, आप ऐसे एक लाइन में तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे समझ लें, आप रखें बैतुल मकदस, उसके नीचे लिखे मदीना, उसके नीचे लिखे मक्का। अब आप मक्का में हैं तो आप की डायरेक्शन कैसी है कि वे आप खाना काबा भी सामने है और बैतुल मकदस भी। लेकिन जब आप मदीना पहुंचे हैं तो आप समझ लें बीच में आप एक नुक्ता लगाएं। अब या तो आप बैतुल मकदस की तरफ नमाज पढ़ सकते हैं, तो या तो आप खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ सकते हैं, मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर सकते हैं। एक ही डायरेक्शन हो सकती है, क्योंकि अगर बैतुल मकदस की तरफ करते हैं तो काबा पीछे हो जाता है। अब क्या था, 16 मंथ्स तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह नमाज पढ़ी बैतुल मकदस की तरफ मुंह करके, लेकिन आपका दिल बहुत था कि काबा वो हो आपका और उस तरफ आप नमाज पढ़ें। सहाबा ने भी पढ़ी और यहूदी भी बड़े खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका किबला तो वही था बैतुल मकदस, तो उन्होंने सोचा कि इनका भी किबला यही है तो हमारी ही एक्सटेंशन है ये भी। लेकिन फिर ये हुक्म आया कि अब किबले की डायरेक्शन अल्लाह ताला ने चेंज कर दिए, अब किबला मक्का बैतुल्लाह की तरफ होगा आपका। जब ये चेंज आई तो ये कोई छोटी बात नहीं थी, इसलिए कि लोग हमेशा से बैतुल मकदस की तरफ ही नमाज पढ़ते थे, चाहे यहूदी चाहे ईसाई। और ये भी कि इसको एक पॉइंट ही समझा जाता था लोगों की तरफ से, जो भी इल्हामी अधियान थे उनकी तरफ से। और अब एकदम ये बड़ी चेंज थी, जबकि अच्छे भले उस तरफ पढ़ रहे थे, तो अब ये क्या हो गया कि ये इधर पढ़ने लग गए। इसके ऊपर एक शोर मच गया, एक वावेला, एक टॉक ऑफ द टाउन थी ये कि देखो जी, इनको इनको तो यही नहीं पता चलता इन्होंने करना क्या है, कभी उस तरफ पढ़ रहे हैं तो कभी अब इस तरफ चेंज हो गई इनकी। और सबसे ज्यादा इसके अंदर आगे आगे यहूदी थे, क्योंकि वो बड़ा तिल मिलाए कि ये क्या बात हुई, अगर उस तरफ ही करना था तो फिर पहले यहां पे पढ़ने की क्या जरूरत है, और अगर अब यही था तो फिर अब चेंज क्यों कर दिया। तो ये कौन सा तरीका हुआ, अच्छे भले तो इधर पढ़ते थे। ये एक समझ लें कि जो लोग पहले ही शर पसंद हो और पहले ही किसी चीज को लेकर और बात का पतंगड़ बनाने वाले हैं और पीछे पड़े रहते हों और हमेशा इस तलाश में हों कि कोई ना कोई बात हमें अब मिल जाए कि हम इनके खिलाफ बोलें, तो उनको तो बड़ा अच्छा एक मौका मिल गया। अब ये नहीं थे कि कभी किबला बैतुल्ला था ही नहीं, हम तो कहते ना किबला अव्वल हमारा मस्जिद अक्सा था, तो किबला अव्वल नहीं था, पहले तो यही था, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला तो यही था। आरजी तौर पे बैतुल मकदस को बनाया गया था, मगर दूसरी उम्मतें यानी मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले और ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले वो बैतुल मकदस की तरफ ही पढ़ते थे। 2000 साल तक आप देखें ये बनी इसराइल के ही रहा, तो ये सारे उस तरफ ही थे। लेकिन अब ये चेंज हुआ तो ये एक नई उम्मत को की निशानी था, इसको सिग्निफाई करता था कि ये एक नई उम्मत है, इनका नया किबला, ये यानी अब वो नहीं है जो पिछली की कंटिन्यूएशन हो, ये अब चेंज हो गए, मुसलमान अब एक उम्मत है, ये कौम की का नाम नहीं है। तो जब ये इतना प्रोपोगेंडा होना था, उससे पहले ही बता दिया गया कि ऐसा होगा, ऐसे लोग कहेंगे। अच्छा, अब ये भी बात याद रखें कि क्या यहूदियों का कहना इतनी बड़ी बात थी? हाँ, इसलिए क्योंकि यहूदियों को लोग बहुत मानते थे अरब में, इनको अहले किताब कहते थे, पीपल ऑफ द बुक, जाहिर है यही थे, मुशरिकीन मक्का के पास तो कोई किताब नहीं थी, इनको इल्म वाले समझा जाता था। ये वैसे भी दौलत में और शऊर में और इल्म में बाकियों से ज्यादा थे, तो इनको बड़ा लुकअप किया जाता था। बड़ी इनकी हैसियत या अहमियत समझी जाती थी। आप खुद देख लें, मुशरिकीन मक्का भी अपने नुमाइंदे इन्हीं के पास भेजते थे कि जाकर पूछ के आओ कि हम इस नबी से क्या सवाल करें। तो उनका बातें बनाना छोटी बात नहीं थी, और उनके साथ फिर मुनाफिकीन भी मिल जाएं, उससे लोग जाहिर है जो कमजोर ईमान वाले थे वो मुतासिर होने का चांस था। और इसको बड़ी बात बनाया गया था, और बड़ी बात थी भी। क़िबला होना कोई छोटी बात नहीं, वो किसी उम्मत का सेंटर, उसका न्यूक्लियस, उसकी यूनिटी का एक मरकज, एक पॉइंट है जो उनका सेंटर पॉइंट बन गया। तो इस सारी के बाद अब आप ये समझें कि ये एक पहले ही बात बता दी गई कि देखो ऐसा होगा। और जब आप दूसरा पारा शुरू करते हैं तो शुरू में ही क्या ये नहीं बताया गया कि किबला चेंज हो गया? सयकूलु सुफहाउ मिनन्नास, पहले ही उनको वार्न कर दिया गया मुसलमानों को कि अनकरीब कहेंगे ये लोग, कौन जो बेवकूफ हैं वो कहेंगे, मिनन्नास लोगों में से, मा वल्लाहु मन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा, किस चीज ने इनको फेर दिया भाई इस किबले से जो जिसकी तरफ ये पहले नमाज पढ़ा करते थे। कानू थे वो जिस पर, किस पर थे, यानी बैतुल मकदस की तरफ ये नमाज पढ़ते थे, उस किबले से इनको किसने फेर दिया? मुनाफिकीन को भी मौका मिल गया। तो उन्होंने कहा भाई ये दीन अगर अल्लाह की तरफ से होता तो फिर देखिए ना, अल्लाह ताला को तो पहले ही पता है कि किस तरफ को करना है डायरेक्शन। तो ये थोड़ी होता है कि अब पहले एक बात कह दी गई फिर दूसरी बात कह दी गई। अब ये सारी बहस जो है ना, आप देखेंगे दूर दो रकुआत तक, ये जो पहले दो रकुआत, ये तहवीले किबला की है। तहवील का मतलब क्या, आप तफसीरों में भी पढ़ेंगे तहवीले किबला, तो बंदा सोचता है कि तहवील का मतलब क्या होता है। तहवील का मतलब होता है चेंज होना, घूमना। तो यानी पहले किबला कुछ होगा, उसे चेंज होना किबले का, ये क्यों हुआ? आखिर 16 महीने भी तो इन्होंने पढ़ी थी, तो ये मामला क्या हुआ? अब ये जो किबले की तब्दीली है, किबले को बदला जा रहा है, ये वो किबला है जो मुसलमानों का किबला, इस नई उम्मत का किबला होगा। लेकिन बेवकूफ लोग ये कहेंगे, बेवकूफ लोग किसको कहा जा रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे, वो अपने आप को बड़ा इल्म वाले कहते थे, उन्हीं की किताब में ये लिखा हुआ था कि आखिरी नबी जो आएगा उसका किबला बैतुल्ला होगा, बैतुल मकदस नहीं होगा। लेकिन अब ये ही खड़े होके ये बातें करने लगे, और इसी तरह मुनाफिकीन भी, उनको इन्हीं लोगों को बेवकूफ कहा गया क्योंकि ये एक ऐसी चीज का एतराज कर रहे हैं जो इनको पता भी है, इल्म होने के बावजूद इस चीज के ऊपर ये ऐसी बातें बना रहे हैं। और किबले की तब्दीली को छोटी चीज, छोटी सी तब्दीली नहीं थी कि थोड़ी सी डायरेक्शन इधर से उधर हो गई, बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो गया। देखिए मैंने आपको बताया ना, आप नुक्ते इस तरह लगा लें तो अब बैतुल मकदस है, तो फिर भी उससे चेंज करना हो तो बिल्कुल चेंज हुआ। अब क्या था कि बाज जगह पे आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दावत पे थे, और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल हुई और आपने बिल्कुल चेंज किया। तो उसके अंदर देखे ना, बिल्कुल मूवमेंट भी करनी पड़ती है, पूरे के पूरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेंज हुए, और जाहिर है पीछे तो सहाबा खड़े में, तो इसका मतलब वो भी मूव किए, पूरा एक शिफ्ट हुआ और वो भी पीछे आए। और आप के लिए शायद ये नई बात हो कि ये भी एक जगह पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में थे और वहां पर ये किबले का चेंज आया, और फिर एक सहाबी गए और उन्होंने जाके दूसरे सहाबा जो मस्जिद क़िबलतैन में जो नमाज पढ़ रहे थे उनको बताया, तो तो उन्होंने भी चेंज किया। तो ये भी रिवायत सही रिवायत है और ये भी आपको मिलती है, इसलिए कभी आपको पता चले तो आप बहुत सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। तो अब जो किपला पहले नॉर्थ की तरफ था, अब साउथ की तरफ मुड़ गए, तो उन्होंने कहा ये किस चीज ने इनको फेर दिया, ये क्या बात हो गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया गया कि आपने इनके लेवल पे उतर के इनको जवाब नहीं देना, बल्कि कुल कह दीजिए आप लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिल मुस्तकीम, अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, हर सिफ्त तो अल्लाह ही की है। वो कह दे मशरिक की तरफ करो या मगरिब की तरफ करो, ये उसकी मर्जी, जिस तरफ चाहे करा दे, सारी जमीन अल्लाह की है। ये किबला तो सिर्फ इसलिए है कि तुम्हारे लिए एक सेंटर हो, जिसको तुम्हारा यूनिटी का सेंटर हो, तुम सारे उस तरफ हो जाओ, वरना अल्लाह माफ करे हम कोई किबले की इबादत तो नहीं करते ना, उस घर की इबादत नहीं करते। अब बाज दफा मुशरिकीन ये एतराज करते मुसलमानों पर कि हम ठीक है बुतों को पूछते हैं, आप कहते हैं ये पत्थर के बुत है, तो तुम भी तो काबा को पूछते हो, वो पत्थरों का है, हम काबा को नहीं पूछते, वो सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए है हमारी। और ना ही हम ये कहते हैं यहाँ पे नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला अल्लाह अल्लाह है, उसका घर इन मानों में नहीं है, वो तो अर्श पे है। ये तो लोगों के लिए, आगे आप पढ़ेंगे सूरह आले इमरान में, वुदिया लिन्नास लोगों के लिए है, कि लोग सारे बजाय इधर उधर उधर अपने मुंह करके पढ़े, एक उनकी डायरेक्शन हो। और फिर ये आप अल्लाह ताला के ऊपर कोई ये नहीं कह सकता कि उसने ऐसे क्यों और ऐसे क्यों किया, सारी जमीन उसकी है, मशरिक और मगरिब सब उसके, वो जैसे चाहे करते, और जिसको चाहे सिराते मुस्तकीम की हिदायत दे दे। क्योंकि कोई लोग हैं जो कहेंगे ये क्यों किबला बनाया, वो क्यों ऐसे किया, फिर ऐसे पहले क्यों किया था, या बहुत सारे लोग देखे आज भी कहते ना ये हलाल क्यों है, ये हराम क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है। याद रखिए अल्लाह ताला के अहकामात के बारे में बहुत ज्यादा इस चीज के पीछे ना पड़े कि मुझे इसका जवाब ही मिलना चाहिए, ये क्यों है ऐसे, तभी मैं मानूंगी। कोई जवाब मिल जाए, कोई हिकमत पता चल जाए, अच्छी बात है चलो, लेकिन उसका पता चलना या ना चलना हमारे अमल पे कोई फर्क नहीं डालना चाहिए। कि भाई अगर मुझे हिकमत पता चलेगी, मुझे रोजे की हिकमत पता चलनी चाहिए, मुझे ये किबला ही क्यों ऐसे क्यों किया था, वो ये जाप का क्यों हुक्म है, ये फलां तिजारत में सूद क्यों हराम किया गया, फलां चीज में ऐसे क्यों, इतनी सारी बातें। अच्छा फिर वो पोर्क को क्यों हराम किया गया, खिंजीर क्यों हराम है, तो फिर और जानवर क्यों हलाल है, तो फिर ऐसे क्यों। देखिए इन अल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह ताला जो चाहे हुक्म दे, ये समझ जाए। सारी आपके सवालों के जवाब ना इसमें, जो चाहे वो हुक्म दे, क्या कोई मुल्क का बादशाह भी हो, इंसान भी कोई होता है ना बादशाह, तो वो कोई लॉ बना देता है तो किसी की मिजाल नहीं होती कि जाकर पूछे नहीं रेड लाइट पे क्यों खड़े होना, अगर उसके ऊपर चलना हो तो नहीं रेड ही क्यों आपने सिलेक्ट किया, नहीं पहले ये बताए ना आपने वहां पे ग्रीन क्यों नहीं रख दिया, ग्रीन पे क्यों चलना, वहां पे आपने ब्लू क्यों नहीं कर दिया, ऐसे कोई सवाल नहीं करता, कोई नहीं ये पूछता जाके भी इस चीज की ये इस चीज के ऊपर आपने ये क्यों हुक्म दिया, उसके ऊपर आपने ये क्यों दिया, ये लेन आने की क्यों है, वो लेन जाने की क्यों है, ऑपोजिट क्यों नहीं है। भाई आप कभी सवाल नहीं करते ऐसे, लेकिन जहां अल्लाह ताला के हुक्मों की बात आ जाती है उसमें हर एक ही शेर है, हर एक सवाल कर रहा है उठ के, ये क्यों ऐसे, वो क्यों ऐसे, वो क्यों ऐसे। और जी यानी किसी का काम होना चाहिए कि वो हमें सेटिस्फाई करे, अब को हम सेटिस्फाई होंगे तो फिर हम मानेंगे, वरना नहीं हमने मानना। हालांकि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका एक मोमिन के अमल पे कोई फर्क पड़ना चाहिए, अगर आप वाकई ईमान वाले हैं ना तो डजेंट मैटर ये ऐसे क्यों, वो वैसे क्यों, वो ऐसे, इस हजार इस तरह के सवाल आते हैं, और हमें तो शक पड़ गया जी अपने दीन पे। क्योंकि हमें तो भाई इसके जवाब चाहिए, आप जवाब दीजिए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ये जवाब देना। इसलिए कि जिस दिन आपने कलमा पढ़ा था ना, तो आपने मान लिया है कि इलाह अल्लाह ताला है। जब उसको इलाह मान लिया, खुदा मान लिया, लायक इबादत मान लिया, तो फिर अब सारी बातें खत्म हो गई। अब आपके सारे सवालों का कोई वो नहीं बनता। हाँ, वो जरूर सवाल करे जिसने इस दीन में एंटर होना। अब मुझे पहले सही अब ये चीज पता हो, ये चीज समझ हो, वो कह सकता है। लेकिन वो बंदा जो कह रहा है कि मैं ईमान वाला भी हूं और उसके बाद भी ऐसे क्यों है, ये वैसे क्यों है, इतना काफी नहीं है कि आपने उसको जिसको आप खुदा माने में उसने बस फरमा दिया तो बस ये हुक्म है उसका, दैट्स इट। मेरे लिए यही काफी है कि ये उसका हुक्म है। इसके बाद किसी को कोई चूं चरा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे। जिसको वो चाहता है हिदायत देता है, तो वो किसको चाहता है हिदायत देता है? सिराते मुस्तकीम की, इसके अंदर खुद भी हिदायत की तलब हो। और ये भी इसका माना बनता है, अल्लाह ताला हिदायत देता है मैं यशाओ, जो चाहता है, जो खुद हिदायत लेना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसको जरूर हिदायत दे देता है। ऐसे नहीं कभी होता कि मुझे तो हिदायत की बहुत तलब थी, अल्लाह ने ही नहीं मुझे हिदायत दी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आपके अंदर वाकई सच्ची तलब है ना, अल्लाह ताला जरूर रास्ता दिखाएगा। और यकीन करें, कई लोग कहते हैं हमें कुरान की तड़प थी कि हम इसको समझे, हम तो इसके इंतजार में थे, हम तो चाहते थे, हम तो पहले ही तलाश में थे, अल्लाह ताला दिखा देता है रास्ता। आपके अंदर अगर तलब होगी, अल्लाह ताला जरूर रास्ता देगा। तो मन यशाउ का तर्जमा जिसे वो चाहता भी है और जो चाहता भी है, जो चाहता का मतलब ये होगा कि इंसान चाहता है तो अल्लाह ताला जरूर दिखा देते, और जिसे वो चाहता है का मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला दिखाता है जिसको वो चाहता है सिराते मुस्तकीम, जिसमें वो तड़प देखता है ना, वो उसको कभी ऐसे नहीं जाने देता। तो अब हमें क्या अमल की बातें समझ आई इस आयत से? जी, आप खुद सोचा भी करें ना, खुद सोचें क्या आपको समझ आया। हमारी जिंदगी में कई ऐसे हालात होते हैं या कई ऐसी बातें हो जाती हैं कि चेंज आता है, और बहुत सारे लोग जब आप जब दीन की तरफ आते हैं तो जाहिर है, एक अगर वाकई आप भी अपने आप को चेक करना चाहें तो इस क्राइटेरिया पे चेक कर सकते हैं कि जब आप दीन की तरफ आते हैं आपके अंदर चेंज आता है तो बड़े लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं, इसको देखो लो, इसको पहले नहीं पता था, पहले तो बड़े ये काम करती थी, ऐसे करती थी, ऐसे करती थी, और आप देखो जरा। कई लोगों ने कहा, उन्होंने जब अपनी जिंदगी को बदला तो कई लोगों ने ताने दिए, लो अब अपनी शादियां करके अपना सारा करके अब देखो बड़ी पाक दामन बन गई है, अब बड़ा कहती है कि मैंने सीख लिया कुरान, अब नहीं मैंने करना, वो तो अपने वक्त में ऐसे किया और ऐसे किया। इस तरह के ताने देते हैं ना, पास्ट के ताने, चेंज आने के ताने, लो जी 900 चूहे खाके बिल्ली हज को चली, अब इनको याद आ गया है, अब तो ये ऐसे हो गए वैसे हो गए। तो जब इंसान चेंज होने लगता है, अल्लाह ताला की तरफ आता है, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने लगता है, तो बेवकूफ लोग ऐसे कहते ही हैं। तो अगर आपको कोई कहे, समझ लें आप सही डायरेक्शन में हैं, इसका मतलब आपके अंदर कोई चेंज आ रहा है, ये तो अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी नहीं कुछ कह रहा ना, इसका मतलब कुछ नहीं चेंज आया है, अभी तक वैसे ही है, कुरान पढ़ के भी वैसे हैं, कुरान पढ़े बगैर भी वैसे ही थे। तो ये तो ताने सुनने पड़ते हैं, इसके लिए तैयार रहें। और सहाबा को देखें कि जब ये चेंज आया था, कोई इजी नहीं था, आगे बात आएगी, तो उन्होंने कोई चूचरा नहीं किया, उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं की देखो पहले ऐसे था, अब देखो ये हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल डाल दी ना, पहले ही दे देना चाहिए था ये हुक्म, क्यों नहीं दिया गया शुरू में ही, अल्लाह ताला तो हर चीज को जानता है, उसने शुरू में क्यों नहीं दे दिया? आगे आएगा इसका रीजन, क्या वजह थी। तो जब ऐसी बातें सुननी पड़े तो कभी दिल छोटा ना किया करें, ये क्या बात हुई, तो ये तुम क्या बन गई, ये तुम्हारे ने क्या शुरू कर दिया है। ठीक है, उसको बल्कि इस चीज पे खुश हूं कि इसका मतलब है कि मेरे अंदर कुछ अमल आ रहा है, कुछ चेंज आ रही है। तो और जब भी अल्लाह ताला का कोई हुक्म आए और उसके अंदर ये ना समझ आ रहा हो कि ये क्यों दिया गया हुक्म, तो मेरे लिए इतना ही काफी होना चाहिए, लिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, अल्लाह ही का तो सारा कुछ है, वो जो चाहे हुक्म दे, जैसे चाहे बताए, मुझे इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग चेंज से घबराते हैं, वो इसी डर से चेंज नहीं करते अपने आप को कि फिर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि सयकूलु सुफहा हर जमाने में होता रहेगा, बेवकूफ लोग जरूर कहेंगे। दीन पे आप चलने लगेंगे ना, आपको फूलों के हार नहीं कोई पहना देगा, जरूर कोई ताना देगा, कोई भवें चढ़ाएगा, कोई मुंह उधर कर लेगा, कोई हो सकता है आपसे दोस्ती खत्म कर दे, कोई आपको बुलाना बंद कर देगा, आप इधर उधर से बातें सुनेंगे, फलां आपको आके कहेगा, तुम्हें पता है वहां पे वो ये कह रहे थे देखो इसको क्या हो गया, वो फलाने ने ये कहा, फलाने ये कहा, इसको भूत सवार हो गया अब दीन का। इस तरह की बातें आपको सुनेंगी तो फिर समझ जाएं, देखें अगेंस्ट द वॉटर स्विम करना हमेशा मुश्किल होता है, बहाव के साथ तैरना बड़ा आसान होता है। जिधर सारी दुनिया चल रही है ना, उधर ही किबला इनका भी रहता, वो यहूदियों का भी था तो ठीक था, लेकिन यूं ही चेंज आया तो चेंज हजम नहीं होता लोगों को, और फिर लोग बातें बनाते हैं। तो हमेशा याद रखें, पानी के बहाव के मुताबिक तैरना बड़ी बात नहीं है, अगेंस्ट तैरना ही तो मुश्किल होता है। जैसे सब चल रहे हैं उनकी तरह चलना इसलिए आसान लगता है कि आप ब्लेंड इन कर जाते हैं, आप अलग से नजर नहीं आते, लेकिन ऑपोजिट चलना जहां पे सब लोग चल रहे हैं उससे उलट जाना, ये होता है मुश्किल काम, और यही हो जाता है इम्तिहान, यही पता चलता है कौन कितने पानी में। देखे ना, आपके दोस्त मसलन है सब, मिसाल के तौर पे एक वैसी मिसाल दे रही हूँ, सब बेहिजाब है, ठीक है, अब आपने हिजाब शुरू कर दिया तो अब आप एक अजीब सी उनको नजर आने लगी, अब कोई कुछ बात बताएगा, कुछ कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, उनके लिए तैयार रहे, लेकिन तब आपके दिल को तसल्ली होनी चाहिए कि मैं अल्लाह का हुक्म मान रही हूं। और सहाबा कराम ने देखो कहां कहां तक उन्होंने बातें सुनी और किस किस तरह के हालात से गुजरे, उन्होंने गिव अप नहीं किया था, मैं क्यों करूं। आप मसलन किसी शादी पे गए हैं, वहां पे नाच गाना और बेपर्दगी और मिक्स सारे बैठे में और अजीब माहौल एक बना हुआ, अब अगर वहां से आपने उठने की जुर्रत कर ली तो बहुत सारी बातें सुननी पड़ेंगी, उनको तो तमीज ही नहीं है, दीन इनको ये सिखाता है, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो जो भी कोई कह ले, किसी ने कहना जुमा जुमा 4 दिन हुए नहीं और देखो इनको, और खुद तो अपने वक्त में सारे शौक पूरे कर लिए और देखो, अब इतने ताने होंगे कि आप दुखी भी होंगे, भी मेरा कसूर क्या है, हम तो दीन को ही फॉलो कर रहे हैं, सहाबा भी दीन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कितनी उनको बातें सुननी पड़ी। अल्लाह ताला ने आगे फरमा दिया कि ये बहुत बड़ी बात थी उस सोसाइटी में, ये ऐसे नहीं था कि कोई छोटी बात थी, आज एक को को खड़ा होकर कोई एक नई बात शुरू कर दे तो कितनी बड़ा एक वाबेला बन जाएगा, और खास तौर पे अगर आप पहले भी वो काम उन्हीं के जैसे करते रहे, आप भी उनके साथ मूवीज पे जाते थे, आप भी उनकी जैसी ड्रेसिंग करते थे, आप भी नाचते गाते और झूमते थे, आप भी ऐसी शादी कर, तो फिर तो बहुत ही बड़ा एक वो हो जाएगा कि ये अब इसने पलटा खाया तो कैसे कैसे इसके अंदर ये चेंज आया, क्यों आ गया? तो तब यही सोच लिया करें, हो सकता है ये जो ताने मैं सुन रही हूं और इस पे सबर कर रही हूं आज, हो सकता है इसी से अल्लाह ताला, जो मुझे तकलीफ पहुंच रही है इनकी बातों से, अल्लाह ताला इससे मेरे पिछले वो सारे गुनाह जो मैंने जहालत में किए थे उन सारों को धो डाले। उस वक्त नहीं थी मुझे समझ, तो प्रिपेयर कर दिया गया। ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी बेवकूफों की तरफ से, उनको बेवकूफ करार दिया गया, उनको अकल नहीं है, उनको समझ नहीं है। जब ईमान ही ना हो तो फिर यही काम होते हैं, फिर लोग इसी तरह की बातें करते हैं। खुद से जब नहीं किया जाता तो वो दूसरों को भी नहीं करने देते। तो आप भी प्रिपेयर्ड रहें, आपको जब भी बात सुननी पड़े तो खुश हो जाया करें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी है, तूबा लिल गुरबा, फरमाया खुशखबरी हो स्ट्रेंजर्स को, गुरबा स्ट्रेंजर्स तूबा है उनके लिए, उनको मुबारक हो कि वो लोगों में अजनबी नजर आएंगे। वो ऐसे नहीं होंगे कि सारों के साथ जिधर चलो तुम उधर को हवा हो, जिधर की जिधर सारे चल रहे हैं जी जी उधर ही चलें, हम क्यों अपनी अलग, सऊदी अरब गए तो वहां के मुताबिक हो गए, अमेरिका आए तो यहाँ के मुताबिक हो गए, किसी और मुल्क गए तो वहां के मुताबिक हो गए, हर जगह जा जैसा देश वैसा भेस, हमारा खुद का कोई रंग नहीं है, हम हर एक ही रंग में रंग जाते हैं, तो सिबगत अल्लाह कहाँ गया फिर? अल्लाह का रंग जिस पे चढ़ा होता है ना, वो ऐसा कच्चा नहीं होता कि जिधर गए उधर जाके उनके रंग में रंग गए और अपना कोई रंग ही नहीं। तो सिर्फ अल्लाह चढ़ाना है। तो ऐसे मौके आए तो समझ जाया करें चेंज आ रहा है मेरे अंदर, यही पहली निशानी होगी आपकी, यहीं से आपको टेस्ट हो जाएगा। अल्लाह ताला की मर्जी है, वो जो चाहे हुक्म दे, चाहे मेरी समझ में आए या ना आए, कोई एतराज करे, अगर सारी दुनिया भी एतराज करने लगे ये क्यों ये क्यों ये कैसे, तो उनकी बातें करने से कोई चीज बुरी नहीं हो जाती, और उनके किसी चीज को अप्रूव करने से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। क्राइटेरिया क्या है जिसको अल्लाह ताला हक कह दे, अल हक में रब्बी का ये आगे आ रहा है, जिस जमीन पे हम खड़े हैं वो किसकी है, जब मशरिक और मगरिब उसके हैं तो उसके बीच में ये जगह भी उसी की है। तो चाहे तहवीले किबला हो या शरीयत का कोई भी हुक्म हो, तो देखो कि किसकी तरफ से आ रहा है। हर एक के लिए डिफरेंट चीजें मुश्किल हो सकती हैं, अल्लाह ताला का कोई हुक्म हो सकता है जो किसी के लिए मुश्किल, किसी के लिए नमाज ही मुश्किल है, किसी लिए लास्ट में बैठना मुश्किल है, किसी के लिए कोई चीज मुश्किल, किसी के लिए कोई चीज मुश्किल है। तो ये अल्लाह ताला ही है जिसकी जिसको हिदायत दे दे सिराते मुस्तकीम की। वकदालिक जालनाकुम उम्मत वसता, और इसी तरह हमने तुम्हें बना दिया उम्मत वसत, बेहतरीन उम्मत। ये कि इसी तरह का मतलब क्या है, यानी जिस तरह अल्लाह ताला ने काबतुल्लाह को फजीलत दे दी कयामत तक के लिए, शर्फ दे दिया, इसी तरह तुमको उम्मते वसत बनाकर शर्फ दे दिया, फजीलत वाली बेहतरीन उम्मत बना दिया तुमको। तो ये तो अल्लाह ताला ने ही शर्फ दे दिया है, ये हम खुद नहीं ऐसे, ये कई भी बातें नहीं है कि उम्मते मुस्लिमा चुनी हुई उम्मत है, बेहतरीन उम्मत है तमाम उम्मतों में, और किस वजह से वो भी आगे हम देखेंगे, लेकिन ये अल्लाह ताला ने टाइटल इनको दिया उम्मते वस्त का। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम अपने मुंह मियां मिट्ठू खुद ही बन रहे हैं जी, हम खुद ही देखो वो तो हर एक ही कहता है कि वो बेहतरीन है और आपने भी कह दिया हम बेहतरीन है, तो ऐसा नहीं है, ये अल्लाह ताला ने बनाया है इनको, इस उम्मत को, और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें अल्लाह ताला ने इस उम्मत में पैदा फरमाया, हमें ये शर्फ मिला इस उम्मत में होने का। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखिए, अच्छा आपने वस का तो मतलब समझ लिया है ना, कि सेंटर माना भी है, बेहतरीन का माना भी है, बैलेंस्ड का माना भी है, ये सारे माने हैं इसके अंदर। अब आप समझिए इस बात को कि मसला ने एक बंदे को बादशाह बना दिया जाता है। अब जिस दिन वो बादशाह बन जाता है तो क्या उसकी जिंदगी वैसी ही होती जैसे पहले थी? अब वो क्या ओवर स्पीडिंग करेगा, गाड़ी लेके चला, बादशाह जी वो जा रहा है ओवर स्पीडिंग करता हुआ। अच्छा, वो कहीं जाके झूठ बोलेगा और कहीं जाके चोरी करेगा? नहीं, कहेगा कि नहीं देखो ये इसके स्टेटस के मुताबिक नहीं है ना, उसके ऑनर के मुताबिक नहीं। तो आखिर बादशाह है वो सौदा लेने के लिए कहीं जा रहा है, वो उसने कहीं किसी के साथ लड़ाई शुरू कर दी है, यहाँ पे खड़े होकर तू तू मैं हो रही है जी, ये बादशाह साहब खड़े में इसके साथ झगड़ रहे हैं, ऐसा को ऐसी कोई हरकतें नहीं करेगा। क्यों? देखिए उसके मर्तबे के मुताबिक नहीं है ना। अब मैं एक आम आपको बात, इसे अभी आप एक साइड पे करके एक वैसे दुनियावी तौर पे सोचें, आप कहते हैं इसके मर्तबे के मुताबिक नहीं, बादशाह कहाँ और कहाँ ये इस तरह सड़कों में घूम रहा है, और वो कैसे वो गाड़ी को मतलब रेड लाइट के ऊपर गाड़ी गुजार रहा है और देखो गाड़ी चलाने लगा हुआ है, क्योंकि ये तो इसका स्टेटस ही नहीं है। कि इसका मतलब है कि जिसका जो मकाम होता है उसके मुताबिक उसको चलना होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि वो सो के उठ ही नहीं रहा, वो जी सोया ही पड़ा है। अब जी कितने फैसले उसने करने हैं, कितनी चीजें उसने करनी है, कितना कुछ है उसकी जिम्मेदारियां, तो वो जी सोया पड़ा है, आज जी बादशाह साहब उठ ही नहीं रहे। इस तरह से नहीं होता। क्या होता है कि वो जब बादशाह बन गया तो अब उसकी जिम्मेदारियां भी उस मुताबिक हैं। अब वो आम लोगों जैसे काम नहीं करता, क्योंकि अब वो बादशाह सलामत है, अब उसका एक प्रोटोकॉल है, उसकी एक जिम्मेदारी है, उसने जहां बड़े बड़े काम करने हैं वहां पे उसको ये जो बादशाह का टाइटल मिला है तो अब उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है ना, उसने बड़े फैसले करने हैं। अब वो ये नहीं देखेगा कि घास काटी गई कि नहीं मेरे लॉन में, वो ये नहीं देखेगा कि वो अच्छा जी फलां जो मेरे किचन में क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा और कितने लोग किचन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ये नहीं देखेगा, ये उसके काम नहीं है। अब वो बड़े बड़े कामों के लिए है, वो ये नहीं देखेगा कोने कुदरों में सफाई हुई है कि नहीं मेरे महल के, ऐसी चीजें नहीं है, ये उसका कैलिबर ही नहीं है, वो तो बहुत बड़े हाई स्टेटस वाला बंदा हो गया। अच्छा अब इसको अब यहां पे लेकर आइए, उम्मते वसत, अब फूले नहीं समा रहे हम तो, उम्मते वसत बन गए। अब उस गए मैं तो बादशाह बन गया हूं, अब जी क्या है, बस खाना पीना सोना, चलो जी। नहीं इस तरह नहीं होता ना, अब कहेंगे भाई आप ऑफिस आए, बादशाह के ऑफिस में बैठे हैं, आप वहां पे फैसले करें। अब क्या है, उम्मते वसत जब आपको टॉप पे रख दिया गया, वो उम्मत जिसको लीडरशिप पोजीशन दे दी गई, वो उम्मत जो बेहतरीन उम्मत करार दी गई, जो चोजन वंस हैं, क्या इनका काम क्या है भाई? इनकी भी तो कोई जिम्मेदारी ही होगी ना, जिसको जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं। अब बादशाह ने मुल्क चलाना है पूरा, वो क्या करना शुरू हो जाए, वो जाकर बर्तन धोने शुरू हो जाए किचन में घुस के, वो कहेंगे भाई ये क्या हो रहा है, तुमने मुल्क चलाना है कि तुम ये कर रहे हो? आप सोचें, उम्मते वसत बहुत बड़ा एक शर्फ है जो मिला इस उम्मत को, उसने ये छोटे छोटे काम नहीं करने कि वो छोटे कामों के अंदर पड़े हुए हैं, उनको तो अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम दे दिया। क्या काम है उनके जिम्मे? लितकूनु शुहादा अल नास, कि वो हो जाए गवाह लोगों पर। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी उम्मत वसत पे दोबारा आते हैं, लेकिन पहले आप ये इनका रोल समझ लें। लोगों के ऊपर इनकी यानी इन्होंने गवाही देनी है, यानी अल्लाह ताला ने इनको अपना नुमाइंदा बना दिया कि मेरे दीन को लोगों तक पहुंचाना है। इन्होंने गवाही कैसे देनी है? दुनिया में, पहले दुनिया का तो सुन ले, दुनिया में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है अल्लाह के दीन को। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होगा? यानी अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। उम्मते वसत के, अब इसके ऊपर आए दोबारा, उम्मते वसत के अंदर एक मैंने आपको माना बताया है दरमियाने का, दरमियाना बैलेंस्ड का भी बताया है, बेहतरीन को तो छोड़ देना, बेहतरीन का आपने समझ लिया बात, और इसी वजह से ये बेहतरीन भी हुए हैं। उसने मुल्क चलाना है, इस वजह से वो बादशाह है। तो ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो दरमियान में हैं, यानी नबी आए दुनिया के अंदर लोगों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही जिम्मेदारी थी। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, तो वो किसको सौंप के गए ये जिम्मेदारी? क्या फरमाया था हज्जतुल विदा पे? कोई पता है आपको कि जो गायब हैं उनको वो लोग पहुंचा दें जो हाजिर है, यानी हाजिर गायब को पहुंचा, जो मौजूद हैं वो गैर मौजूद तक मेरा पैगाम पहुंचा दें। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि जो काम मैं करता था वो अब तुम करोगे, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे, ठीक है? अच्छा, अब क्या है, इस उम्मत की जिम्मेदारी होगी कि ये वो लिंक बन गए। दरमियानी जो चीज थी ना, एक लिंक होता है ना, वो बन गए किसके दरमियान? इंटरमीडिएटर कह लें। वो बन गए किसके दरमियान? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और आने वाली जितनी इंसानियत है उनके दरमियान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम था, जो आप लेकर आए अल्लाह ताला की तरफ से, आपको जो दिया गया था, उसको इंसानियत तक पहुंचाना एक कितना नोबल काम है। आप देखें, आप एक डॉक्टर को कहते हैं ये बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्यों? ये लोगों को, यानी बीमार होते हैं तो उनको इलाज करता है, उनको यानी वो ठीक होते हैं, उनकी बीमारी दूर हो जाती है, तो कितनी बड़ा शर्फ का, कितनी बड़ी इज्जत वाला एक आप उसको समझते हैं एक प्रोफेशन। वो सोचें कि जो लोगों को जहन्नुम से की आग से बचाने का काम कर रहे हों, फायर फाइटर को भी आप बहुत नोबल समझते हैं कि जो आग बुझाने का काम करता है, दुनिया की छोटी सी आग बुझाने का काम करता है, तो आप उसको कहते हैं कि ये बड़ा नोबल, कितनी उसको इज्जत की बात समझी जाती है। जो इंसानियत को जहन्नुम की आग से बचाने का काम करे, जन्नत पे पहुंचाने का काम करें, सोचे वो कितना नोबल काम है। और वो भी अल्लाह ताला की जॉब कर रहा है कि अल्लाह ताला ने उसको चूज किया हो कि वो तुम हो जिसके जिम्मे मैं ये लगाता हूं कि मेरा पैगाम तुम आगे तक पहुंचाओ। आप कहते हैं ना अम्बेसडर है, ये इस मुल्क का अम्बेसडर है, इस मुल्क का, दूसरे मुल्कों में जाते हैं अम्बेसडर्स। आप अम्बेसडर हैं अल्लाह ताला के इस जमीन के ऊपर कि उसका पैगाम आगे तक पहुंचाएं। इतनी बड़ी शान होती है एम्बेसडर की भी, जितने बड़े मुल्क का होता है उसके मुताबिक जी उसके बड़ा प्रोटोकॉल होता है। तो आप तो अल्लाह ताला के दीन के एम्बेसडर हैं, आपकी कितनी बड़ी शान है, ये कि छोटी बात नहीं है। बाज़ जगह पे आता है कि कई पैगंबरों ने ये ख्वाहिश की कि या अल्लाह हमें उम्मते मुहम्मदिया में अल्लाह ताला पैदा कर दे। तो ये छोटी बात है कि अब नबी कोई नहीं आएगा, नबियों को तो चूज किया जाता था ना, अब ये पूरी उम्मत को चूज कर लिया गया कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाएंगे लोगों तक। अब कैसे वो पैगाम पहुंचाने, आप देखें इसी वजह से ये बेहतरीन है, क्योंकि ये पैगाम पहुंचाती है, ये लिंक है, ये वास्ता है, ये दरमियान में है। मैंने आपको बोला ना दरमियानी, ये दरमियान में है और बैलेंस्ड भी है। बैलेंस्ड कैसे? देखिए, जो चीज दरमियान होती है वो बैलेंस्ड होती है ना, ना इस तरफ ज्यादा है ना उस तरफ ज्यादा है। ना यहूदियों ने वैसे ही कई चीजें हराम थी उन्होंने अपने ऊपर हलाल कर ली, और ईसाइयों ने कई जो चीजें हलाल भी थी वो भी छोड़ के जाके रहमानियत इख्तियार कर दी, जंगलों में निकल गए। वो उनके अंदर कई चीजों उन्होंने हद से ही बढ़ गए आगे के, पैगंबरों को भी अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी के वलदु जिना कह दिया यहूदियों ने, और क्या क्या उनके ऊपर तोहमतें लगाई। ईसाइयों ने खुदा का बेटा ही बना के रख दिया। तो यानी बहुत सारे मामलों में, सिर्फ एक में नहीं, बहुत सारे मामलों में ये उम्मत वसत ही बैलेंस्ड है ना, बहुत ही एक्सट्रीम इस तरफ ना बहुत और देख लें जो चीज बैलेंस्ड होती है वही बेस्ट होती है ना। दुनिया में भी देख लें, जो भी चीज एक तरफ को बिल्कुल ही निकल जाते हैं तो वो भी नहीं सही होता। इवन हमें ये इबादत में भी कहा गया ना
क्या बैलेंस्ड रहे। ये नहीं कि सारे दिनों ही रोजा रखना शुरू कर दे, ये नहीं कि सारी सारी रातें ही नमाज पढ़ने शुरू कर दे और अपने नमाज, ये नहीं कि कभी कभी शादी ही नहीं करनी, बैलेंस्ड। तो देखिए हमें दीन में भी बैलेंस सिखाया गया, ये उम्मत इतनी मोतदिल है, इतनी बैलेंस्ड है, और दरमियानी भी आपको समझ आ गया ना। इस वजह से जो चीज दरमियानी वो बेहतरीन ही है, तो ये बेहतरीन उम्मत इस वजह से भी बन गई, इफरात और तफरीत से पाक है, एक्सट्रीमिज्म से पाक है, ना तो बिल्कुल छोड़ दिया, ना तो बिल्कुल ही ऐसे होगा कि हर चीज में आजादी कर दी। हम कहते हैं ना हर चीज हराम हलाल, हराम हलाल, नहीं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजों को ऐसे नहीं कि ये हराम है ये हलाल, आप हर चीज को ये लेबल लगा दिया जाता ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाते, हम चाहते हैं कि हर चीज में लेबल लग जाए हराम हलाल, इसलिए भी बैलेंस्ड है। तो ये उम्मते वसत है, ये गवाह बने, ली तकूनु शुहदा अलन्नास, ये गवाह बने लोगों पर। अब ये बताएं ली ताके, ये उम्मत वसत किस लिए, ताकि ये काम करे, इसका मतलब है आप बेहतरीन तभी हैं जब आप ये काम करते हैं। वो क्या काम है, मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे तो आज तक यही नहीं पता। अच्छा मेरा कोई काम भी था, आप उठा के देख लें, आप एक सर्वे जरा करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ना, आप कम से कम 20 लोगों का, 15 से 20 लोगों का आपका ये होमवर्क है, आप सर्वे करना, कहीं पे भी आप जाते हैं जरा बातचीत करें ना लोगों से, सर्वे कोई आप खास तौर पे कुछ पेन पेपर लेके नहीं मैं कह रही, लेकिन जस्ट आप ये सवाल करें लोगों से, आपको पूछना है लोगों से कि उम्मत मुस्लिमा क्या बेहतरीन उम्मत है, वो आप वो बहुत सारे लोग कहेंगे यस बेहतरीन उम्मत है, ये तो बेस्ट है, ये तो ऐसे जमीन आसमान के कलाबे मिलाए, लेकिन बेस्ट कैसी है, उनको कहीं किसी को ये नहीं पता होगा कि हमारा काम क्या है, बस ज्यादा से ज्यादा ये जवाब देंगे क्योंकि हम नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत है, बस इसलिए हम बेस्ट हो गए। तो भैया आपका क्या कारनामा हो गया, इसमें आपने कौन सी बड़ी छलांग मार दी जो कि आप इसी बात के ऊपर ही आप बेस्ट हो गए। देखिए ना किसी के कोई काम से कोई बेस्ट होता है, वो तो अल्लाह ताला ने आपको पैदा कर दिया, उसमें आपकी क्या बड़ाई हो गई। यकीन जाने कोई ही होगा जिसको, जिसने कुरान पढ़ा होगा सिर्फ उसको पता होगा कि आप क्यों बेस्ट हैं, आपका क्या काम है, इस काम की वजह से, इस नोबल जॉब की वजह से आप बेस्ट हैं, कि आपके जिम्मे ये काम है, क्योंकि आप इस काम को करने वाले। वो क्या काम है, शुहदा अलन्नास, गवाह बने लोगों पर, यानी लोगों के सामने रिप्रेजेंट करें अल्लाह ताला के दीन को। सबसे पहले इसका मतलब है अपनी जिंदगी में दीन को शामिल करें, अपनी अमल करके दिखाएं खुद, और यानी ये भी तो एक गवाही है ना, आपके अमल से आप गवाही दे रहे हैं, और आप अपनी जुबान से भी लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। हमें सिर्फ दावा करना आता है कि हम लोगों को बुला रहे हैं, लेकिन हमने अपने अमल से इसकी गवाही नहीं दी कभी। गवाही ये इज्तमाही तौर पे हमें देनी है, यानी सारी उम्मत को देनी है, सारी उम्मत की जिम्मेदारी कि अल्लाह ताला के हुक्मों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके दुनिया को हम दिखाएं कि देखो इस्लाम ऐसा होता है, ये है इस्लाम। आज क्या है कि हम हर जगह पे ये सुनते हैं, इनसे सीखें, ये लोग देखें ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं, इनका अखलाक ये है, इनकी ईमानदारी ये है, इनकी सच्चाई ये है, हम उनसे ले रहे हैं, हमने खुद लोगों को दिखाना था, लोग हमें दिखा रहे हैं, उन्होंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया इस्लाम के अहकामात को, एक तौहीद पे नहीं आए वो, बाकी सारा इस्लाम उन्होंने फॉलो कर लिया, लेकिन हम पीछे रह गए। तो हमने तो इसको अपने ऊपर लागू करके दिखाना था, एक रोल मॉडल बनना था दुनिया के सामने, और इसको फिर अपनी जुबान से आगे तक पहुंचाना था। लेकिन अगर अपनी जुबान से हम कहें आ जाओ इस तरफ, इस दीन की तरफ, और हमारा सारा अमल ही बिगड़ा हुआ है, तो कौन आएगा। इवन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में आप देखें वहां पे कितने क्रिश्चियंस हैं, उनके घरों में काम करने वाले अक्सर क्रिश्चियन हैं, लेकिन मैंने नहीं, कभी नहीं मैंने ये देखा कि किसी की क्रिश्चियन मेड ने उस बेगम साहबा को देख के कभी इस्लाम कबूल कर लिया हो, उस घर के निजाम को देख के इस्लाम कबूल कर लिया हो, वो इतनी इंप्रेस हुए हो कि या अल्लाह मुसलमान ऐसे होते, वो आज तक जैसे थे वैसे ही हैं, ना तो हमने अपने ऊपर इसको लागू किया ना कभी उनको इस तरह बुलाने की जहमत गवारा की। अव्वल तो बुलाएंगे भी क्या, वो कहेंगे उससे तो बेहतर हम खुद ही अपने इसके ऊपर ही हैं, आपको आपके जैसे बन के हमने क्या करना, इतनी वर्स्ट हमने पिक्चर दी है दुनिया को अपने अमल से कि हम एक दूसरे के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के साथ काम कारोबार करने में भी कहते हैं मुसलमान है तो धोखा ही देगा, इसने तो झूठ ही बोला होगा, हम एक गोरे की दुकान पे चले जाएंगे मुसलमान को हम समझते हैं इसने कोई डंडी मारी होगी। ये आज हमारा हाल हो चुका है कि हम अमल में इतने पीछे रह गए, हमने करना क्या था, किस काम के लिए आए, हमें तो पता ही नहीं है। ये हिदायत का पैगाम, हमने इसकी गवाही देनी थी कि ये सच्चा है, ये सच्चा दीन है, देखो इस दीन की तरफ आके आपकी जिंदगी कैसी होती है। तो लोग तो इस दीन से भाग रहे हैं मुसलमानों को देखकर, आना तो दूर की बात है। कोई मैंने ये नहीं कहते हुए देखा मुसलमान को देख के हम इस्लाम ले आए, हाँ कुरान पढ़ के जरूर लाते हैं, मुसलमान को देख के कोई इस्लाम लाने वाला आज नहीं है, क्योंकि इतनी वर्स्ट पिक्चर हमने दिखा दी है। तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम हो जाओ अल्लाह के दीन के गवाह, तो आप बात बताएं जब किसी के ऊपर जिम्मेदारी होती है उसकी पूछ भी होती है कि नहीं, या बादशाह बन के बैठ जाए और उसकी कोई पूछ पड़ताल ना हो, ऐसे तो नहीं होता। तो जब इस उम्मत को इतने बड़े मनसब पे रखा गया तो अब इससे पूछा भी जाएगा, इस जिम्मेदारी का सवाल होगा, जैसे बनी इसराइल की आपने पूरी चार्जशीट सुन ली है ना, ये उनके क्राइम थे, ये उनके क्राइम थे, ये उनके क्राइम थे, अल्लाह ताला ने उनको मग़दूब कर दिया, उनके ऊपर लानत कर दी, अल्लाह ताला का गुस्सा उनके ऊपर है क्योंकि उनको इतनी बड़ी फजीलत दी कर उन्हें ये किया, आप बताएं कि हमारा क्या होगा, क्या हमारे ऊपर आज अगर कोई पैगंबर होता और कोई किताब उतर रही होती क्या सेम चीजें हमारे लिए ना आ रही होती, ये लोग ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, ये तो लगता नहीं है बनी इसराइल की बातें हो रही, तो लगता है हमारी ही हो रही, और हमने छोड़ दिया ये काम, और आज क्या क्या दिया, या तो मौलवियों की बातें हैं, मुल्लाओं का काम है, और तुम क्या मुल्लानी बन गई, अगर कोई किसी को बुलाने के लिए खड़ा हो जाता है कहते हैं ये तुम्हारा काम ही नहीं। आज देखें वो जो हमारी जिम्मेदारी थी उसके लिए कैसे खींच खींच के लोगों को लाना पड़ता है कि देखो ये भी हमारा काम है, बल्कि यही तो हमारा काम है एज उम्मत। देखिए आपकी हर रोल में आपकी एक जिम्मेदारी होती है ना, मसलन आप एक माँ हैं तो उस नाम से आप एक माँ है ना, अब मुझे कहना नहीं पड़ेगा, अगर मैं कहूंगी आप एक औरत है तो फिर तो ठीक है फिर आप जो मर्जी करें, लेकिन जब मैं कहती हूं आप एक माँ है ना तो इस वर्ड के अंदर ही पता चल रहा है कि आपके कोई बच्चे हैं जिनकी आपको केयर करनी है, जिनकी आपको जिम्मेदारी है, जिनके आपको ख्याल करना है, आपको खाने पीने रहने सहने सोने जागने सब चीजों का आपके ऊपर जिम्मेदारी है। इतना मुझे इसलिए समझाना पड़ा कि कोई किसी को आप में से कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किस तरह से आप इस आयत से निकाल रहे हैं, आप जब उम्मत वसत है ना तो उम्मत वसत से ही पता चल गया आपका क्या रोल है, जैसे एक माँ वर्ड से ही पता चल गया, तो ये आपकी दुनिया में जिम्मेदारी है हम में से हर एक की, और ये जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सौंप के गए थे, और इसी की फिर बाज बरस कयामत के दिन हमसे होनी है, उस वक्त पूछा जाएगा आपने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी की, और अलन्नास, कयामत के दिन लोगों पर हम कैसे गवाह होंगे? एक तो हम दुनिया में गवाह है ना, एक लोगों पर हम कयामत के दिन कैसे गवाह होंगे, ये उम्मत मुस्लिमा कैसे गवाह होगी? वो ऐसे गवाह होगी कि कयामत के दिन नबियों को लाया जाएगा। बहुत सारी अहादीस में ये बातें मौजूद हैं और उसका खुलासा ये है कि नूह अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और उनसे अल्लाह ताला सवाल पूछेगा। पहले नबी से सवाल होगा, आपने क्या अपनी जिम्मेदारी पहुंचा दी? ठीक है, जो वो उनके जिम्मे वही वाले काम है ना, ये अल्लाह का दीन पहुंचाना, जो अब हमारे जिम्मे काम है। अगर आप समझ रहे हैं कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, वो तो उनसे पूछा गया था। ठीक है, तो सुने ये बात कि नबियों से पूछा जाएगा, हालांकि अल्लाह ताला देखने वाला है, जानने वाला है, उनसे भी सवाल होगा, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी? वो कहेंगे या अल्लाह हमने तो पहुंचा दिया था। अब डाइवर्ट की जाएगी कन्वर्सेशन उनकी उम्मत की तरफ और उनसे पूछा जाएगा आप तक पैगाम पहुंच गया था? वो कहेंगे नहीं, हमें तो कोई पैगाम इन्होंने दिया ही नहीं। अब कहा जाएगा नबी से कि ये तो कह रहे हैं कि इनको तो कोई पैगाम ही नहीं मिला, आपके पास कोई गवाह है कि आपने पैगाम दिया था? वो कहेंगे हाँ, उम्मत मुस्लिमा को लाया जाएगा और ये उम्मत गवाह देगी, गवाही देगी कि या अल्लाह इस नबी ने पैगाम पहुंचा दिया था और सही सही पैगाम पहुंचा दिया था। तो पूछा जाएगा आपको कैसे पता, आप तो उस वक्त थे भी नहीं, तो हमारे कुरान ने हमें बताया, हमारे नबी ने हम तक कुरान पहुंचाया। अब आप बताइए कि जिसने कभी कुरान ही ना पढ़ा हो वो कैसे गवाही देगा? और फिर क्या, अगर नबियों से पूछा जा रहा है तो इस उम्मत से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने भी अपना काम किया था कि नहीं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया तुम्हारा ये काम है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप उस दिन बस ये ताज पहन के बैठ जाएंगे कि हम उम्मत मुस्लिमा हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे हमने तो जन्नत में पहुंच ही जाना है, हम तो चुने हुए लोग, हम तो बेहतरीन लोग, काम तो करके नहीं आए। तो ये जिम्मेदारी है, ये जॉब है। वो यकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूल तुम्हारे ऊपर शहीद होगा, वो तुम्हारे ऊपर गवाह होगा। देखिए गवाही किसी के फेवर में भी होती है और किसी के अगेंस्ट भी दी जाती है, गवाही दोनों होती है ना। तो जब लाम के साथ आए तो हक में गवाही होना है, जब आला के साथ आए तो खिलाफ होता है। कयामत के दिन तो ये उम्मत दूसरी लोगों के ऊपर गवाही देगी, यानी उनके खिलाफ देगी, जब वो कह रहे हैं कि हमें तो पैगाम ही नहीं मिला, ये उनके खिलाफ गवाही देंगे। और रसूल खिलाफ गवाही देने वाला जब हो जाए कि मैंने तो या अल्लाह पहुंचा दिया था, हुज्जत तो तमाम हो गई, कोई एक्सक्यूज नहीं रह गया, उनसे पूछा जाएगा ना, तो वो कह देंगे कि मैंने पहुंचा दिया। और रसूल कौन? नबी अलैहिस्सलाम। लेकिन अब अगर उम्मत ने ही इग्नोर किया तो फिर क्या होगा? उम्मत के ऊपर तो अब ये केस हो गया, क्योंकि सूरह फुरकान में भी आता है कि उस दिन रसूल कहेंगे यार अब मेरी कौम ने इस कुरान को पीछे डाल दिया था। तो उस दिन कोई एक्सक्यूज नहीं रह जाएगा, कोई नहीं ये कह सके हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमें तो किसी ने पहुंचाया ही नहीं, हमें क्या पता था, हमें भी पता होता तो हम भी कर लेते। इसीलिए इतना जरूरी है कुरान पढ़ना, ये हुज्जत तमाम कर देते। अब आपको सब कुछ पता है, अब अमल के मैदान में आओ। तो आज आपको पता चल गया कि आपका एज उम्मत वसत आपका क्या काम है और क्यों आप बेहतरीन उम्मत है। अब आप ये आज आपको पता चला है ना, अब इस बात को आगे भी पहुंचाइए। अब चार लोगों में बैठे तो आप उनसे भी पूछे, पहले तो अपने घर वालों से पूछे, फिर कहीं और पूछे, और फिर बताएं कि कितने लोगों ने आपको सही जवाब दिया। काम तो करना क्या है, वो तो बाद की बात है, इवन हमें तो पता तक भी नहीं है, काम कैसे करेंगे जब पता ही नहीं किसी को कि ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी तो जिम्मेदारी खाना पीना और पहनना ओढ़ना और बस ये करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बादशाह का काम नहीं है कि वो जाके किचन में बर्तन धोए, ये नहीं कह रही अपने बर्तन नहीं धोने, कि वैसे मिसाल बता रही कि वो कोने खुदरों में जाके सफाई देखना शुरू कर दे। तो उसका काम बहुत बड़ा आला दर्जे का है। यानी ये हम जिन कामों में हम अपना ज्यादा वक्त गुजारते हैं, बस इधर उधर हंस खेल लिया, उधर गपशप कर ली, उधर पार्टी टाइम कर लिया, और इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। कभी सोचा भी है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी डाली है? और आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम अपने अमल से तो गवाही दे दें, वो भी नहीं है। वमा कान अल्लाह वमा वमा जालनल किबलत अल्लती कुंता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ रसूल मिम्मन यनकलिबु अला अक़िबैह। अब यहां पे हिकमत बताई गई, क्यों अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि शुरू के अंदर ही क्यों नहीं कर दिया, कि शुरू में ही बता दिया जाता कि भाई यही किबला है, ताकि इतनी बड़ी मसले ही ना पड़ते। तो क्यों नहीं ऐसा किया गया? इसलिए नहीं किया गया, वमा जालना किबला तल्लती कुंता अलैहा, और नहीं बनाया हमने किबले को इसे जो दे जिस पर आप, मगर इसलिए कि हम जान लें कौन इत्तेबा करता है रसूल की और कौन अपनी एड़ियों के बल फिर जाता है। बैतुल मकदस को हमने शुरू में किबला बनाया, और इसको इसलिए नहीं बनाया कि वरना तो पता ही ना चलता। अब पता चला है ना कौन से लोग हैं जो इस चीज को लेकर बैठ गए, क्यों ऐसे किया गया, क्यों ये किया गया, ये क्या बात हो गई, और कौन है जो ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का हुक्म दे दिया, बस हमारे लिए इतना ही काफी। समय ना हुआ ताना करने वाले कितने लोग हैं? ये लोग कम ही होते, ज्यादातर लोग छोटी छोटी बातों पर ऑब्जेक्शन। अब आप आज भी देख लें कितने लोग हैं जो दीन के ऊपर इतनी ऑब्जेक्शंस करते हैं। कोई लौंडियों के लेकर बैठ जाता है, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आयशा के साथ शादी को लेकर बैठ जाता है, कोई और चीजों को लेकर बैठ जाता है। यानी कोई ना कोई शोहे छोड़ते ही रहते हैं, सुन के आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये करने लग जाते हैं कि हम भी, हमारे अंदर भी डाउट्स आ गए। तो अल्लाह ताला चेक करता है कि कौन है, जैसे उस सोसाइटी में भी ये सबका इम्तिहान हो गया, कौन है जो अब इसको मानता है बिला चू चरा, और कौन है जो सोच विचार में पड़ जाता है। आपने देख लिया ना पहले के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया असलम, तो फरमाया असलम तो ले रब्बिल आलमीन, दूसरी कोई बात ही नहीं की, फौरन झुक जाने वाले थे, फौरन मान जाने वाले थे। और जो इंसान ये करे कि कभी कोई तावील, कभी कोई सोचना, कभी कोई बात, अब उनकी समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में इसलिए नहीं आता कि अमल करने का दिल नहीं चाहता। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसे हो रहा है, मैं तो कंफ्यूज हो गई हूं। तो ये तभी होता है जब अंदर अंदर नहीं, इंसान का शरा सदर नहीं हुआ हुआ, खुला नहीं है अल्लाह को हुक्म लेने के लिए, तभी सोच विचार में पड़ते हैं, तभी मशवरे करते हैं, तभी कल करेंगे परसों करेंगे। तो ये अल्लाह ताला इम्तिहान जरूर लेगा, और इम्तिहान ऐसे आते रहते हैं। कई होते हैं जो भगौड़े होते हैं, जो भाग जाते हैं, कई होते हैं जो उसी वक्त समझ जाते हैं और मान जाते हैं। हम किन में से हैं? हम क्या करते हैं? आप देखें अल्लाह ताला का हुक्म पढ़ के समझ कर चेंज लाने के लिए, ये भी तो चेंज थी ना एक बड़ी, चेंज लाने के लिए हम बातें बनाते हैं, या हम सर झुका देते। मैंने आपको क्या बताया था, मुस्लिम कौन होता है जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो। मुस्लिम वो ऊंट है जिसकी नुकेल उसके मालिक के हाथ में हो, जिधर चाहे बिठा दे, जिधर चाहे उठा दे, चला दे, जैसे भी सलूक करे वो झुका रहता है। उसकी नुकेल है ना, उसने मालिक ने हाथ में पकड़ी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वा इनकानत ला कबीरा तन इल्ला अल्लतीना हाथ अल्लाह। ये बहुत बड़ी बात थी, बड़ी जाहिर है, ये मैंने आपको जैसे बताया, ये बड़ी चेंज जल्दी इंसान एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ ये भी बदलना पड़ेगा, ये भी बदलना। कई लोग नए नए आते हैं तो फिर उनको होता है आए अब हम क्या क्या करें ऐसे हो। ये बड़ी बात थी, क्योंकि जो लोग अहले किताब में से मुसलमान हुए थे उनके लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी। अंसार का भी इम्तिहान हो गया, मुहाजरीन का पहले इम्तिहान था, क्योंकि वो तो पहले मक्का के अंदर तो बैतुल्ला की तरफ मुंह कर लेते थे, अब यहां पे आके उनको बैतुल मकदस की तरफ करना पड़ा था। 16 महीने उनका इम्तिहान रहा था। और अब भी ये भी कि ये बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए कि लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे, वो लोगों ने तो कहना ही था, उसी से तो पारा शुरू हुआ। लेकिन क्या उन्होंने फिर लोगों की परवाह की? अल्लाह ताला ने देखना है कौन लोगों की परवाह करता है और कौन रसूल का इत्तेबा करता है। कौन कहता लोग बड़ी बातें बनाएंगे, भी हमसे तो नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, हमने तो दुनिया में ही रहना है ना। चाहे रसूल का हुक्म टूटे तो टूटे, अल्लाह का हुक्म टूटे तो टूटे, हमने बस ये लोगों की बातें नहीं हम सुन सकते। तो बेशक ये बड़ी चीज थी, ये कहा गया यहां पे बड़ी चीज है, और चेंज बड़ी चीज होती और भारी होती है, मुश्किल होती है, लेकिन इल्ला लदीन हदल्ला, उनके लिए नहीं जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफा वल गिना। अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं हिदायत का, हमें हिदायत दे दे। जिनको अल्लाह ताला हिदायत दे दे ना, जिनको समझ आ गई, वो फिर समय ना वाता ना करते, वो सर झुका लेते, वो नहीं ज्यादा बातें करते, और बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं। अब खुद सोचे ना, हम में से अक्सर इस वक्त जो बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, हम कुरान करीम पढ़ चुके हैं, एक दफा ग्रेजुएट भी हो चुके हैं, ठीक है, आगे भी आएगा जो अपनी ख्वाहिशात की बस पैरवी करते हैं। तो एक तरफ हमारी ख्वाहिशात होती हैं, एक तरफ कुरान कुछ कह रहा होता है। अब हमने सुन भी लिया, सीख भी लिया, समझ भी लिया, टेस्ट भी दे दिए, ग्रेजुएट भी हो गए, सर्टिफिकेट भी आ गया, लेकिन आज तक हमारे तरीके नहीं बदले, हमारा हिजाब ही प्रॉपर नहीं है, आज तक हमारे जो काम है उसी किस्म के हैं जैसे पहले थे, आज तक हमारी नमाजों का वही हाल है, आज तक हमारे अखलाक उसी तरह के हैं, हमारे शादी ब्याह के तरीके वैसे ही हैं, हमारे बिजनेस के मामलात वैसे ही हैं, हलाल और हराम की जैसे तरीके अल्लाह ताला ने बताए उसके मुताबिक नहीं है। वो हम वही करना चाहते हैं जो हमारा दिल करता है। कुरान कुछ कह रहा होता है, हम कुछ और कर रहे होते हैं, रसूल ने कुछ फरमाया, हमने कुछ और किया, तो यही इम्तिहान है। अल्लाह ताला देखता है कौन है जो रसूल की बात पर चलता है, और कौन है जो जब कोई हुक्म आता है तो एड़ियां के बल पर लट जाता है, यानी टर्न ले लेता है वो वापस, वो नहीं, उसने ये काम नहीं करना। यहां से हमें पता चला कि इत्तेबाए रसूल दीन है, ये भी दीन है इत्तेबाए रसूल, यानी हदीस भी दीन है। जो लोग हदीस का इनकार करते हैं वो सोचे, यहां पे इत्तेबाए रसूल को ही दीन कहा गया। अल्लाह ताला जानना चाहता है कौन है जो दीन पे चलने वाला है, उसी को कहा गया इत्तेबाए रसूल करता है, और कौन है जो पलट जाता है। और जब एक तरफ मेरी ख्वाहिशात हैं और एक तरफ अल्लाह का दीन है, और मेरा दिल ही नहीं कर रहा
और मेरे दिल में बहुत तरह की बातें आती हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो कहीं से, मुझे पता चल जाए कि बस ये कर सकती हूं मैं, अपनी ख्वाहिशात मेरी गालिब आ रही है ना, तो जरूर अपने ईमान का टेम्परेचर चेक करें, यहीं से आपको पता चल जाएगा मेरा ईमान कितना है। फिर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ईमान नहीं है, लेकिन लो लेवल का है, बहुत लो लेवल का। जब जब मेरी ख्वाहिश मुझे रोक देती है अल्लाह के दीन पे अमल करने से, तो ये बड़ी चीज थी। तो इसका मतलब है ये उस वक्त में आप, ये आपके लिए शायद बड़ी ना हो, आप कहेंगे तो कोई बात नहीं, किबला ही चेंज हुआ था ना, क्या फर्क पड़ता था। नहीं, ये बहुत बड़ा मसला बन गया था वहां पे, और आसान नहीं था, और इतनी बातें सुननी पड़ रही थी। उन्होंने इस चीज की परवाह नहीं की कि ये लोग ऐसे कहेंगे तो ऐसे हो जाएगा। मामा कान अल्लाह ली दिया ईमानकुम, एक और शोशा उन्होंने छोड़ा। भाई ये क्या बात हुई, अब इन्होंने तो किबला ही चेंज कर ली। अब जो आप लोगों के फौत हो गए हैं, वो तो बैतुल मकदस की तरफ पढ़ते पढ़ते नमाजें फौत हो गए, अब उनका क्या बनेगा, उनकी तो सारी नमाजें ही गई। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ईमान को नहीं जाया हो करेगा तुम्हारे। यहां पर ईमान से मुराद क्या है, इसकी तफसीर क्या है, कौन बताएगा? ये तो हमें, इसीलिए तो हदीस चाहिए हमें, कि कुरान की तफसीर हदीस से होती है। अगर हमने हदीस को छोड़ दिया तो कुरान भी समझ नहीं आ सकता। तो हमें क्या पता चला, यहां पर ईमान का मतलब है नमाज। अल्लाह ताला उनकी नमाजों को जाया नहीं करेगा, नमाज को ईमान कहा गया। कभी कभी जुज कह के कुल मुराद लिया जाता है, और कभी कुल कह के जुज मुराद लिया जाता है, यानी एक वो होलसम एक चीज की बात कर दी जाती है, नमाज उसके अंदर ही शामिल है, नमाज ईमान है। तो इसके जिसकी नमाज नहीं, उसका कोई ईमान नहीं है। तो कई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं इवा अपनी नमाजों के लिए, जबकि नमाज के बगैर तो दीन है ही नहीं। नमाज तो दीन का सतून है, पिलर है, इसके ऊपर दीन खड़ा होगा। और अगर नमाजें जाया हो रही हैं, कभी पढ़ी और कभी नहीं पढ़ी, तो फिर सोचें कि क्या हमारे ईमान का हाल है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम की कड़ियां एक के बाद एक टूटती जाएंगी। पहली कड़ी जो टूटेगी ना, समझ ले ऐसे जैसे कोई चेन है, उसमें से जो पहला जो कड़ा होता है, जो चेन का वो होता है गोल सा दायरा, तो जो पहला टूटेगा वो है खिलाफत, खत्म हो जाएगी। और जो आखिरी टूटेगा तो नमाज है, नमाजें से लोग गाफिल हो जाएंगे। उस जमाने में तो मुनाफिकीन को भी नमाज पढ़नी पड़ती थी, क्योंकि नमाज के बगैर किसी को मुसलमान ही नहीं समझा जाता था। आज नमाजें छोड़ के भी हर एक अपने आप को बड़ा अच्छा मुसलमान समझता है। तो ये तो दीन की कड़ियां हैं, लिहाजा नमाज जिसको दीन का सतून कहा गया है, उसके ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है। या हम अपने आप को ईमान वाले नहीं कह सकते जब तक हमारी नमाज दुरुस्त नहीं है, और नमाजों को चेक करने की जरूरत है। कितनी जल्दी हम नमाज की तरफ जाते हैं, हमारी नमाजों के हालात क्या हैं, किस पाए की नमाज हम पढ़ते हैं। इन अल्लाह बिन नासी लरऊफ रहीम, अल्लाह ताला उनकी नमाजों की फिक्र ना करो, वो जिस तरफ भी नमाज पढ़ के गए हैं, अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा ही शफकत करने वाला, बड़ा मेहरबान है, उनकी नमाजें नहीं जाया करता वो। अब देख रहा किस किस तरह से वो मुसलमानों को तंग करने की कोशिश करते थे, कि अब वो बेचारे एक परेशानी में आ जाएं कि हाय हमारे, उनका क्या बनेगा, जो हमारे साथी, जो हमारे और लोग थे जो इस दौरान फौत हो गए, उनको तो नहीं पता था कि किबला इस तरफ था। अल्लाह ताला ने फरमाया इसकी फिक्र ना करो। फिर कद नरा तकल्लुब वजही का फिस्समा, ए नबी हम देखते आपका चेहरा, आपके चेहरे का उठना आसमान की तरफ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि किबला बदल जाए और बैतुल्लाह को अल्लाह ताला किबला बना दे। तो कुछ बोलते नहीं थे और कुछ गिला शिकवा नहीं था कि अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला और हमारे बाप और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये बनाया था और इससे हमें महरूम कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला देखता है ना,
अब कुछ जुबान से नहीं कुछ बोला, बस कि कब वो हुक्म आएगा, कब इंसान ऐसे, कभी कभी आप भी डेस्परेशन में ऐसे आसमान की तरफ देखते हैं ना, ऐसे इंसान को एक होता है, तो वो अल्लाह ताला जानता है उस वक्त, अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे ना तब भी अल्लाह ताला जानता है कि इंसान के अंदर कितनी तकलीफ है या कितनी उसको दर्द महसूस हो रहा है। सिर्फ आसमान की तरफ नजरें उठाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम देखते हैं आपका नजरों का उठना आसमान की तरफ बार बार। फलानुवल्लियन्ना का क़िबला तंतरदाहा, बस हम जरूर फेरे देते हैं क़िबला की तरफ, आपके क़िबले को जिससे आप राजी हो जाएं, आपको हम जरूर फेर देंगे उस क़िबले की तरफ जिससे आप राजी हो जाएं। और आप किससे राजी होते थे? वे बैतुल्ला मस्जिद हराम की तरफ जिससे आप राजी हो जाएं, जिसके लिए अल्लाह ताला ने राजी करने के लिए किबले को बदल दिया। सोचें उस नबी की शान क्या होगी, उस नबी का मुकाम क्या होगा, सुभान अल्लाह, ये जिसको अल्लाह ताला राजी करना चाहता हो। मूसा अलैहि सलाम जब दौड़े गए थे तूर पर और अपने साथ अपने साथियों को लिया हुआ था पीछे, वो साथी पीछे रह गए, मूसा अलैहि सलाम आगे भाग के कि मैं अल्लाह ताला से बात करूं ना। अल्लाह ताला ने पूछा है मूसा, वो कहाँ है तुम्हारे साथी? फरमाया, अल्लाह वो पीछे पीछे आ रहे हैं, तो तुम क्यों इतनी जल्दी जल्दी आए? अल्लाह ताकि तू राजी हो जाए, अल्लाह ताला को राजी करने के लिए, अल्लाह तू राजी हो जाए। और कोई वो भी है इस जमीन पे चले जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप राजी हो जाए नबी, सुभान अल्लाह। तो जिस किबले से आप राजी होते हो हमने उस तरफ आपको फेर दिया। फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम, अब ये सारी तमहीद बांध के अब ये कह दिया गया, अब बस फेर लो अपने चेहरे मस्जिद हराम की तरफ। हैसुमा कुंतुम फवल्लू वुजूहकुम शतर, जिधर कहीं भी तुम हो तुम अपने चेहरों को उसकी तरफ फेरो, यानी आप तुम्हारा किबला ये है, आप दुनिया में कहीं पे भी हैं आप उसकी तरफ, शतर का मतलब होता है तरफ, ठीक है। अब आप देखिए ये नहीं यहाँ पे कहा गया काबे की तरफ फेरो, अगर कह दिया जाता ना काबे की तरफ फेरो तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती, कहा गया उस सिमत उस डायरेक्शन जो मस्जिद हराम की है, यानी आप अगर बिल्कुल जहां जहां पे आप नमाज पढ़ते हैं आप उसे लाइन खींचे काबा तक, तो हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन वहां तक ना पहुंचती हो, इधर उधर हो जाए, जरा सा भी एंगल हो जाता है, कभी हमें जानमाज ही बिछाते हैं इधर उधर जरा सा हो जाता है, तो इतनी मुश्किल में नहीं डाला गया। बस उस डायरेक्शन में भी आप हो जाए ना जिस तरफ मस्जिद हराम है मक्का है, उस डायरेक्शन में भी आपका जायनमाज है तो ठीक है, हम साउथ ईस्ट की तरफ पढ़ रहे हो तो भी सही है, अब कोई लोग कैलिफोर्निया में रहते हैं तो वो दूसरी तरफ से पढ़ते भी हो तो तब भी सही है। तो व इन अल्लदीना उतुल किताब ला यालमून अन्नहुल हक मिन रब्बिहिम, और ये लोग जो किताब दिए गए इनको अच्छी तरह पता है कि ये हक है उनके रब की तरफ से, क्या ये किबले का बदलना इसलिए क्यों हक है, इसलिए कि ये उनकी किताबों के अंदर है मौजूद कि आखिरी नबी का किबला यही होगा बैतुल्ला, तो फिर वो जानते हैं इस चीज को, उनको समझ है इस बात की और उनको पता है कि आपने सही किया है, लेकिन फिर भी वो बातें बनाएंगे, वो ऐसी चीजें कहेंगे कि देखो इनको क्या पड़ गई थी कि इन्होंने ऐसे कर दिया, उनको पता है आपने अपनी मर्जी से नहीं किए, उनको पता है अल्लाह ताला का ये हुक्म आना ही था और इसमें कोई हिकमत थी कि इतनी देर नहीं आया क्योंकि अल्लाह ताला ने टेस्ट करना था, लेकिन ये वो जानते हैं कि आखिरी जो उम्मत आएगी वो उसी किबले की तरफ नमाज पढ़ेगी, तो फिर इनकी बातें बनाने में कोई सब्सटेंस नहीं होता, कोई सॉलिड चीजें नहीं होती, मगर जिन लोगों ने बातें बनानी होती हैं वो ये नहीं कि कोई बात कोई लॉजिक हो उनकी बात के पीछे, बस उन्होंने कुछ कहते ही रहना। तो अब कयामत तक के लिए अल्लाह ताला ने इस चीज को बना दिया कि इस उम्मत का यही किबला रहेगा और ये लोग ऐसी बातें एतराजात करते रहेंगे जानने के बावजूद कि ये हक है, लेकिन वह मल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, अल्लाह ताला कोई गाफिल नहीं है
अल्लाह ताला को सब पता है, इनको पता है और फिर भी ऐसे कहते हैं, ये कैसा दीन है, ये क्या, आए दिन ये तो बदलने लगे हुए हैं।